زمانوں کی امنگ، باب نمبر 5، مخصوصیت۔ مسیح کی پیدائش کے 40 دن بعد مریم اور جناب یوسف اسے یروشلم کو لے گئے تاکہ اسے خداوند کے سامنے پیش کریں اور قربانی چڑھائیں۔ یہ یہودی شریعت کے عین مطابق تھا، اور مسیح کو انسان کا عوضی ہونے کے ناطے شریعت کی پیروی کرنا لازم تھا۔ اس کے ختنے کی رسم پوری ہو چکی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ شریعت کا فرما بردار ہے۔ شریعت کے مطابق ماں تو سوکتی قربانی کے ہدیہ کے طور پر ایک سال کا برہ، ایک کبوتر، ایک فاختہ لاتی تھی، اور اگر والدین غریب ہوتے اور برہ مہیا نہ کر سکتے تو فاختہ کا جوڑا یا کبوتر کا چوڑا ایک سوکتی قربانی کے لیے اور دوسرا گناہ کے کفارہ کے لیے چڑھایا جاتا۔ شریعت کے مطابق خدا کو چڑھائے جانے والی قربانی بے عیب ہونا لازم تھی۔ یہ تمام ہدیے مسیح خداوند کی علامت تھے، جو ظاہر کرتے تھے کہ مسیح میں کسی قسم کا داغ یا جھڑی نہیں پائی جاتی۔ بے عید اور بے داغ برہ یعنی مسیح، سالہ پترس 19 برشک 1۔ مسیح خداوند میں روحانی اور جسمانی طور پر کوئی عیب موجود نہ تھا۔ بچے کی مخصوصیت ابتدا سے چلی آتی ہے۔ خدا نے خود اپنے پہلوٹھے کو مخصوص کیا تاکہ گناہگاروں کو نجات بخشے، اور خداوند چاہتا تھا ہے کہ ہر خاندان جب اپنے بچوں کو مخصوصیت کے لیے دیتا ہے تو خدا کی بخش کو یاد رکھے جو اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی صورت میں عطا کی۔ مسیح یسوع کو اسے کہانت کے لیے مخصوص ہونا تھا۔ مصر سے بنی اسرائیل کی رہائی کے دوران پہلوٹھے کی مخصوصیت کا دوبارہ حکم دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کر فرعون کو یہ کہہ، اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹھے کو ماروں گا۔ خروج 22:4-23۔ جناب موسیٰ نے پیغام پہنچا دیا، مگر مغرور بادشاہ نے جواب دیا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ خروج 2:5۔ خداوند نے نشانیاں اور معجزات دکھائے، فرعون پر ہولناک آفتے بھیجیں، آخر کار ہلاک کرنے والے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ مصر کے تمام پہلوٹھے، خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ حیوان کے، ہلاک کر دو، مگر بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کو زک نہ پہنچانا۔ تاہم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ وہ اپنے دروازوں کی چوکھٹ پر ذبح کیے ہوئے برے کا خون ضرور لگائیں۔ اس خون کا نشان ہر ایک اسرائیلی کے گھر پر ہونا لازم تھا، تاکہ موت کا فرشتہ جب اس گھر کے پاس سے گزرے تو بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کو زندہ چھوڑ دے۔ کو سزا دینے کے بعد خداوند نے لوٹھوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پہلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ خروج 2:13۔ کیونکہ سب پہلوٹھے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹھوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو کیا، انسان کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں۔ گنتی 13:3۔ ہیکل کی خدمت شروع ہونے کے بعد خدا نے لادی کے قبیلہ کو تمام پہلوٹھوں کے عوض اپنی خدمت کے لیے چن لیا، لیکن پھر بھی پہلوٹھے خدا کے ہی سمجھے جاتے تھے، اور انہیں کفارہ دے کر خداوند سے واپس خریدا جاتا تھا۔ یوں پہلوٹھوں کا خدا کے حضور پیش کیا جاتا خاص اہمیت رکھتا تھا، چونکہ یہ خداوند کے اس حیرتناک کام کی یاد میں تھا جو اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کو بچا کر کیا۔ اس لیے یہ اس بات کی علامت ٹھہرا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا آ کر دنیا کو ان کے گناہوں سے مخلصی دے گا۔ جس طرح ذبح شدہ بکرے کا خون جو دروازوں کی چوکھٹ پر لگایا گیا اور وہ بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں کی جان بخشی کا باعث بنا، اسی طرح مسیح کے خون میں دنیا کو بچانے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ مسیح خداوند کو جب ہیکل میں پیش کیا تو اس سے کیا مطلب لیا گیا؟ کاہن پردہ میں سب کچھ نہ دیکھ سکا، نہ وہ اس بھید کو پڑھ سکا جو اس میں پوشیدہ تھا۔ شیرخوار کو پیش کرنا روزمرہ کا معمول تھا۔ جب بچے خدا کے حضور پیش کیے جاتے تو کاہن ان کے والدین سے کفارہ کے پیسے وصول کرتا تھا۔ آئے روز وہ معمول کے مطابق اپنا کام انجام دیتا۔ हाँ अलबत्ता, जब कभी कोई अमीर या ऐले मर्तबा के वालदैन आते तो नजराना गरीबों के मुकाबला में ज्यादा वसूल करता। जनाब यूसुफ और मुकद्दसा मरियम तो गरीब वालदैन थे, और जब वो अपने बच्चे के साथ आए तो काहन ने सिर्फ ऐसे मर्दोजन को देखा जो मामूली गलीली लिबास में मलबूस थे। काहन ने उनमें कोई ऐसी चीज न देखी जो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करती, और उन्होंने गरीब तबका की तरह अपना हदिया पेश किया। काहन ने अपनी खिदमत अंजाम दी, बच्चे को अपने बाजों में लेकर मजबाह के सामने पेश किया। अजाबाद उसे उसकी मां के हवाले करके पहलोठों की किताब में उसका नाम येसु लिखा। काहन को बच्चे के बारे बिल्कुल गुमान न गुजरा कि यही जलाल का बादशाह है, और ना उसने जाना कि यही वो बच्चा है जिसके बारे जनाब मूसा ने लिखा है, खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। आमाल 22:3। काहन को बेशक ये मालूम न हुआ कि ये वहीमी बच्चा है जिसका जलाल देखने के लिए बुजुर्ग मूसा ने अर्ज किया था, यानी जनाब मूसा से भी कोई बड़ा काहन के बाजुओं में था। और जब उसने उसका नाम दर्ज किया तो उसको क्या मालूम था, ये वही है जिसने यहूदी अकायद और रसूम की बुनियाद रखी थी। वो कुर्बानियों का निजाम अब पुराना हो चुका था, और ये नाम येसु तमाम रस्मों और कुर्बानियों के लिए मौत साबित होगा। हैकल से खुदा का जलाल उठ गया, और वो जलाल बैतुलहम के बच्चे में जलवागर हो गया, जिसके सामने फरिश्ते सजदारेज हो गए। यही वो बच्चा था जिसका वादा बागे अदन में किया गया था, यही अमन बख्शने वाला था, यही था जिसने जनाब मूसा को फरमाया, मैं जो हूं सो हूं। ये वही था जो आग और बादल के सुतून में बनी इसराइल का रहबर हुआ। ये वही था जिसके बारे सदियों पहले नबियों ने पेशनगोइयां कर रखी थीं। यही तमाम कौमों को मरगूब था। यही बुजुर्ग दाऊद की असल और सुबह का रोशन सितारा था। ये बेबस बच्चा जिसका नाम किताब में लिखा गया इस बात का ऐलान था कि ये हमारा भाई गुनाह में गिरी हुई इंसानियत की उम्मीद है। ये बच्चा जिसका कफ़ारा दिया गया, ये तमाम दुनिया के गुनाह का कफ़ारा देने आया था। वो खुदा के घर का हकीकी सरदार काहन था जो कभी तब्दील नहीं होता। हमारा ऐसा बड़ा काहन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। वो हमारी शफ़ात के लिए हमेशा जिंदा है। वो खुदा के जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श है। इब्रानियों 21:10-24:7-25, इब्रानियों 3:1। रूहानी बातों को रूहानी तरीक़ा से ही परखा जा सकता है। हैकल में खुदा के बेटे को उस खिदमत के लिए मखसूस किया गया जो वो करने आया था। काहन ने उस पर इसी तरह नज़र की जैसे आम बच्चों पर करते हैं। बेशक उसे काहन तो ना पहचान सका, मगर किसी न किसी ने उसे जरूर पहचाना। और देखो, यरूशलेम में शमून नामी एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज था और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुतनज़र था, और रूहुल कुदुस उस पर था, और उसको रूह से आगाही हुई कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। लूका 25:2-26। जो ही बुजुर्ग शमून हैकल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक खानदान अपने पहलोठे बेटे को काहन के सामने पेश कर रहा है। उनकी जाहिरी हालत से हुरबत टपकती थी, मगर शमून रूह की इगाही को समझता था, और वो ये देखकर बड़ा मुतासिर हुआ कि ये बच्चा जो खुदा के सामने पेश किया जा रहा है इसराइल की तसल्ली का बायस है, और इसी का वो बड़ी देर से मुंतजिर था। शमून बड़ी मुसर्रत और तरब से हैकल में दाखिल हुआ, जिससे काहन खासा हैरान रह गया, और बच्चा मुकद्दसा मरियम को वापस दे दिया गया था। शमून ने मान से बच्चा लेकर अपनी गोद में उठाया और खुदा के सामने पेश कर दिया, जिससे उसकी अपनी रूह निहायत खुशी और मुसर्रत से मामूर हो गई। ए मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। जो तूने सब उम्मतों के रू बर्रू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। लूका 28:2-32। खुदा के इस खादिम पर नबूवत की रूह थी। और जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ वहां खड़े उस कलाम पर हैरान हो रहे थे, उसने उनको बरकत दी। और शमून ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी मां मरियम से कि देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छुट जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। लूका 34:2-35। वहां हना भी आई, जिसने येसु के बारे बुजुर्ग शमून की नबूवत की तस्दीक की। ये बुजुर्ग खातून नबिया थी। और जब शमून कलाम कर रहा था तो हना का चेहरा खुदा के जलाल से दुमक उठा। उसने अपने दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी की कि उसने खुदा के मसीह को देख लिया है। खुदा के इन हलीम परस्तारों ने नबूवत का फजूल मुतालिया न किया था, मगर जो बनी इसराइल में काहनों और उस्तादों के ओहदों पर तायुनात थे, बेशक उन्होंने भी नबूवत को अच्छी तरह पढ़ा और समझा था, मगर वो खुदावन की राह में न चलते थे। इसीलिए जिंदगी के नूर को देखने के लिए उनकी आंखें न खोल गईं। आज भी मजहबी रहनुमा और खुदा की इबादत करने वाले हजरात मसीह येसु पर गौर खौज किए बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो मसीह येसु को तारीख का एक फर्द ही ख्याल करते हैं और जिंदा मसीह से दूर रहते हैं। आज भी उसे तरह कबूल किया जा रहा है जैसे 2000 साल बेशतर मुकद्दमा मरियम बुजुर्ग शमून की दूर रस पेशनगोई पर भी गौर करती रही, जब वो बच्चे पर गौर करती जो उसने अपनी गोद में उठा रखा था, और उस कलाम पर भी जो बैतुलहम के चरवाहों ने उस बच्चे के हक में फरमाया था, तो उसका दिल खुशी और मुबारक उम्मीद से मसरूर हो जाता। और जब वो बुजुर्ग शमून के कलाम पर गौर करती तो उसे यसैया नबी की ये पेशनगोई याद आ जाती, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मारफत और खुदावन के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मिस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा, और वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। यसैया 1:11-4। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। हमारे लिए एक लड़का तावलुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशहूर, खुदाए कादिर अबदियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। यसैया 2:9-6। फिर भी मुकद्दसा मरियम मसीह के आने की हकीकी गर्ज व गायत से नावाकिफ थी। बुजुर्ग शमून ने पेशनगोई कर दी थी कि वो गैर कौमों और बनी इसराइल का नूर होगा। इस तरह फरिश्ता ने उसकी पैदाइश पर उसके बारे फरमाया था कि वो तमाम कौमों के लिए खुशी और शादमानी लाएगा। खुदावन यहूदियों के तंग नजरियात की इसलाह करने में कोशा था, जो वो मसीह के काम के मुताल्लिक रखते थे। खुदावन चाहता था कि बनी नौ इंसान इसे सिर्फ बनी इसराइल का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का नजात दहिंदा कबूल करे। मगर अभी तो काफी अरसा चाहिए था ताकि मुकद्दसा मरियम खुद अपने बेटे के मिशन को समझे। मुकद्दसा मरियम उस दिन की मुंतजर थी जब येसु नासरी बुजुर्ग दाऊद के तख्त पर तख्त नशीन होने को था, मगर उसने दुखों के बपतिस्मा को ना देखा जिसके जरिए फतह पाना थी। मुकद्दस शमून के जरिए मुकद्दसा मरियम पर जाहिर किया जा चुका था कि दुनिया में मसीह का सफर मुश्किलात से पाक ना होगा, बल्कि तरी अपनी जान भी तलवार से छुट जाएगी। खुदावंद खुदा ने अपनी कमाल रहमत में मुकद्दसा मरियम को उन दुखों से आगाह कर दिया था जो उसे बर्दाश्त करना थे, और जो उसने मसीह यीशु की खातिर पेशतर ही सहने शुरू कर दिए थे। मुकद्दस शमून ने कहा था, ये बच्चा इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि तरी अपनी जान भी तलवार से छुट जाएगी। खुदावन खुदा ने अपनी कमाल रहमत में मुकद्दसा मरियम को उन दुखों से आगाह कर दिया था जो उसे बर्दाश्त करना थे और जो उसने मसीह यीशु की खातिर पेशतर ही सहने शुरू कर दिए थे। शमून ने कहा था कि देख, ये बच्चा इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। जिनको उठना हम, उनके लिए लाजिम है कि पहले गिरें। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में उठाए जाएं, अगर हम रूहानी बादशाह के जलाल को देखना चाहते हैं, तो हमें फख्र गुरूर को छोड़ना होगा, हमें पस्त होना होगा, जो इज्जत हलीमी और इनकिसारी से हासिल हो। यहूदी उसे कबूल करने के लिए तैयार न थे, इसलिए यहूदी अपने निजात दहिंदा को कबूल करने के लिए तैयार ना पाए गए। बस यीशु मुखालफत का निशान ठहरा ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। यीशु मसीह की जिंदगी की रोशनी में खालिक के दिल से लेकर तारीकी के शहजादे के दिल तक के ख्यालात वाज़े हो गए। इबलीस ने खुदा को जाबिर और खुदगर्ज के तौर पेश किया था। उसका दावा था कि खुदा हमसे खिदमत का मुतालबा तो करता है मगर उसके एवज हमें कुछ नहीं देता, अपना जलाल चाहता है मगर खुद कोई कुर्बानी नहीं देता। मगर खुदा का दिल हमारे सामने बेपर्दा हुआ जब उसने अपने बेटे को हमारी खातिर दे दिया। इससे पता चला कि खुदा के ख्यालात इंसान के लिए सुलह, सलामती और अमन के हैं, ना के बदी के। यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं। यर्मिया 11:29। इससे पता चलता है कि जहां खुदावंद की नफरत गुनाह के खिलाफ मौत जैसी सख्त और जालिम है, वहां खुदा की मोहब्बत गुनहगार इंसान के लिए मौत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने हमारी निजात का बेड़ा उठा लिया है। वो किसी चीज को अपनी राह में हायल न होने देगा और किसी जरूरी सच्चाई को, जो हमारी निजात के लिए जरूरी है, बाज न रखेगा। हत्ता कि हमारी निजात के लिए तमाम इलाही नुमाइंदगान को खिदमत के लिए बुलाया जाएगा। कैलोरी की सलीब पर मोहब्बत और खुदगर्जी रोबरो खड़ी थीं। यहां दोनों का असल चेहरा देखा जा सकता था। मसीह खुदावन की जिंदगी बरकत और आराम मुहैया करने के लिए थी और येसु का मसलूब होना इबलीस की नफरत का इजहार था जो वो खुदा के खिलाफ रखता था। इससे पता चलता था कि इबलीस खुदा को आसमानी तख्त से बेदखल और मसीह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, जिसकी वसातत से खुदा की मोहब्बत दुनिया पर जाहिर होती थी। मसीह खुदावन की मौत और जिंदगी की बदौलत बनी नौ इंसान के दिल के ख्यालात भी खुलकर सामने आ गए। चरनी से लेकर सलीब तक मसीह ने अपनी जिंदगी खालिक खुदावन के ताबे रखी, दुखों में भी खुदावंद की मोहब्बत तर्क ना की। मसीह खुदावंद तमाम आसमानी सदाकतें लेकर आया, इसीलिए जो रूहुल कुदुस की आवाज सुनते थे उसकी तरफ खींचे चले आते थे, और जो इबलीस के पुजारी थे उनका भी बखूबी पता चलता था कि वो किसकी तरफ हैं। इस तरह हर इंसान अपने ऊपर अदालत को लाया। रोज अदालत को हर एक खोई हुई रूह जान जाएगी कि उसने जानबूझकर सच्चाई को तर्क किया था। उस वक्त सलीब पेश की जाएगी और गुनाह के बायस जिनकी आंखें अंधी हो चुकी थीं, खुद को एक मुजरिम की सूरत में सलीब के सामने पाएंगे। हर झूठा बहाना मुस्तरद कर दिया जाएगा। इंसानी बरगश्तगी घनावनी सूरत में देखी जाएगी। तमाम इंसान अपने अपने चुनाव का नतीजा पाएंगे। इंसानों के हर सवाल का जवाब उनके सामने होगा। हर एक को मालूम हो जाएगा कि खुदा बदी का बानी नहीं, ना उसकी हकूमत में कोई बुराई थी। उस वक्त तमाम बागी और खुदा के वफादार खादिम मिलकर ललकारेंगे, ए अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ए खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा? क्योंकि सिर्फ तो ही कुद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। मुकाशफा 3:15-4।